आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने जोर देकर कहा है कि मगरबी एशिया में महाजाराई के बावजूद मुल्क में खरीफ सीजन के लिए खाद, फसल के बीज और जरई केमिकल्स का मुनासिब जखीरा मौजूद है। शहरी आबाबाजी की सनत ने घरेलू परवाजों के लिए ATF की कीमत में इजाफे को महदूद करने के मरकज के फैसले की सताइश की है, जिससे नासाजगार सूरतेहाल में राहत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म और BJP के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने गैर कानूनी तौर पर इमिग्रेशन को खत्म करने और आसाम में जमीनी हकूक के तहफ्फुज़ का अहद किया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजर बसर के खर्च में इजाफे का इल्जाम लगाया है। पार्लियामेंट ने कर्ज की नादहिंदगी और दिवालियापन से मुतालिक जाब्ते के तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने मरकजी मुसलह पुलिस फोर्सेज के अहलकारों से मुतालिक आम जाब्तों को मुंजबित करने के बिल को मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मर्दमशुमारी 2027 के लिए अपने इंदराज के अमल में शामिल हुई। और मंगोलिया में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के सचिन सिवाच और विश्वनाथ सुरेश मर्दों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज यकीन दहानी कराई है कि मगरबी एशिया महाजराई के दरमियान मुल्क में सभी तरह की फसलों के बीज मुनासिब तौर पर दस्तियाब हैं। नई दिल्ली में मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के सिलसिले में बैन वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए जिरात और किसानों की बहबूद के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी डॉ मनिंदर कौर द्विवेदी ने मुतल्ला किया कि मुल्क भर में खरीफ फसलों के लिए 185 लाख क्विंटल से ज्यादा बीज दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन के लिए इब्तदाई जखीरे के तौर पर 46% खाद पहले ही दस्तियाब है। एडिशनल सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि मुल्क में जरई केमिकल्स की माकूल मकदार भी दस्तियाब है।
जितने भी प्रमुख फसल हैं उनका पर्याप्त बीज उपलब्ध है। धान जिसका सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उपयोग होता है 80.9 लाख क्विंटल, सोयाबीन 35.7 लाख क्विंटल, मूंगफली 21.1, मक्का 11.9 और बाकी तुअर, मूंग और उड़द, इनकी पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता है। ये बीज की उपलब्धता सभी राज्यों में पर्याप्त क्वांटिटी में अवेलेबल है।
शहरी आबाबाजी की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी असंगबा चूबा औ ने मुतल्ला किया कि शहरी आबाबाजी की वजारत ने मुकर्रा घरेलू तैयारा बरदार कंपनियों के लिए हवाई जहाजों के ईंधन की कीमतों में इजाफे को 25% तक महदूद करने के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि इस वक्त मुल्क में खाम तेल का माकूल जखीरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आइंदा 2 महीनों के लिए खाम तेल की मुनासिब सप्लाई को यकीनी बनाने के बंदोबस्त किया है।
हमारी क्रूड इन्वेंट्री सफिशियंट है और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए सफिशियंट क्रूड के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि तेहरान में भारतीय सिफारत खाने ने अब तक 1,071 भारतीयों की वापस आने में मदद की है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में एयर इंडिया ने घरेलू परवाजों के लिए हवाई जहाजों के ईंधन की कीमतों में इजाफे को महदूद करने के मरकज के फैसले की सताइश की है और इसे दानिशमंदाना और बरवक्त करार दिया है, जिससे इस मुश्किल वक्त में शहरी आबाबाजी के शोबे को राहत मिली है। इस दौरान इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि यह एक बामानी कदम है जिससे एयरलाइंस को ज्यादा इस्तेहकाम हासिल होगा। आसाम, केरलम और पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। आसाम की 126 असेंबली हलकों में केरलम की 140 सीटों और पुडुचेरी असेंबली की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वाहिद मरहले में वोट डाले जाएंगे। वजीर आजम और सीनियर BJP लीडर नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात से पहले आज आसाम के गोगामुख और बिस्वानाथ में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। गोगामुख जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि NDA के पिछले 10 साल दौर इकदार में आसाम में काबिले जिक्र तरक्की हुई है। वहीं बिस्वनाथ अवम में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने गैर कानूनी तौर पर मुल्क में रहने वालों को मुकामी लोगों की जमीन पर बसने का मौका दिया। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत आसाम को गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों से छुटकारा दिलाएगी और मुकामी बिरादरियों के जमीन के हकूक का तहफ्फुज करेगी।
एक तरफ BJP NDA सरकार घुसपैठियों से अवैध कब्जे छुड़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ के संतानों को भूमि के अधिकार दे रही है। मिशन वसुंधरा के तहत 23 लाख से अधिक असम के मूल निवासी भूमि के मालिक बने हैं। ये जनजातीय समाज के लिए, ऐसी कम्युनिटी के परिवारों के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन रहा है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है।
सीनियर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज आसाम के अपने एक रोजा दौरे में अवामी जलसों से खिताब किया। शिवसागर जिले में अवामी जलसे से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जिंदगी गुजारने के बढ़ते अखराजात का शहरियों पर बोझ पड़ रहा है।
आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने, आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए।
इंतखाबी कमीशन ने आइंदा असेंबली इंतखाबात से पहले आसाम, केरला और पुडुचेरी में मरकजी मुशाहिदीन तैनात करने के सिलसिले में आज एक जायजा मीटिंग की। आसाम, केरला और पुडुचेरी के चीफ इंतखाबी अफसरान समेत कुल 282 मरकजी मुशाहिदीन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान कमीशन ने मुशाहिदीन को हिदायत दी कि वो इंतखाबात के अमल को त्यौहार के तौर पर यकीनी बनाए, जो किसी भी तरह से डराने धमकाने, तशद्दुद और लालच से आजाद हों और मुनसिफाना हों। असेंबली हलकों की तफसील से मुतालिक आज की कड़ी में हम केरलम के पथनमथिट्टा जिले में वाक़ रन्नी असेंबली हलके पर तवज्जो देंगे। इस असेंबली हलके को देही कुदरती मनाजिर, शजरकारी की मईशत और मजबूत सियासी सरगर्मियों के मजमुए के तौर पर जाना जाता है। इस हलके में खवातीन वोटरों समेत वोटरों की नुमाया तादाद है। पेश है एक रिपोर्ट।
केरलम के पथनमथिट्टा जिले के रानी असेंबली हलके से चार उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। रानी में एलडीएफ के उम्मीदवार के तौर पर केरला कांग्रेस के प्रमोद नारायण चुनाव लड़ रहे हैं। यूडीएफ ने कांग्रेस लीडर पजाकुलम मधु जबकि एनडीए ने 2020 पार्टी के थॉमस के सैमुअल को इंतखाबी मैदान में उतारा है। केपी श्रीहर आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। 2021 में हुए इंतखाबात में केरला कांग्रेस के प्रमोद नारायण ने 1285 वोटों के फर्क से जीत हासिल की थी। 2016 में हुए इंतखाबात में सीपीएम के उम्मीदवार राजू अब्राहम ने रानी असेंबली हलके से 14,000 वोटों के फर्क से जीत हासिल की थी। इस असेंबली हलके में कुल 1,76,000 वोटर हैं, इनमें से 90,000 खवातीन वोटर हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी पी पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
पार्लियामेंट में आज राज्यसभा ने सूती वोट से मंजूर किए जाने के साथ नायदहिंदगी और दिवालियापन से मुतालिक जाब्तों के तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। कॉरपोरेट उमूर के वजीर मुमलकत हर्ष मल्होत्रा ने बिल पेश किया, जिसका मकसद नायदहिंदगी और दिवालियापन से मुतालिक जाब्ते 2016 में मजीद तरमीम करना है। ये बिल कंपनियों और अफराद के दरमियान अमल दरामद में ताखीर और तशरी से मुतालिक मामलात का इजाला भी करेगा। इससे कबल बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि नादहिंदगी और दिवालियापन से मुतालिक जाब्तों का भारत के बैंकिंग शोबे की सूरत हाल में बेहतरी के सिलसिले में अहम रोल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस कानून का मकसद कभी भी कर्ज की वसूलियाबी के एक तरीकेकार के तौर पर काम करना नहीं था। लोकसभा ने आज जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दे दी। यह कानून जिंदगी गुजारने और कारोबार में आसानी के लिए एतमाद पर मबनी हुक्मरानी को तकवीत देते हुए जराइम को गैर फौजदारी करार देने और हकीकी बुनियाद पर उनसे निमटने के लिए जरूरी तरमीमात करता है। यह बिल छोटे मोटे जराइम को गैर फौजदारी जराइम के जुमरे में लाएगा और जराइम के तनासुब से जुर्माने आयद करने जैसे इकदाम नाफिज करेगा। आंध्र प्रदेश तंजीम नौ तरमीमी बिल 2026 को भी आज लोकसभा ने मंजूर कर लिया। ये बिल आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून 2014 में तरमीम करता है। ये बिल अमरावती को आंध्र प्रदेश की वाहिद राजधानी के तौर पर कानूनी दर्जा अता करता है। राज्यसभा ने सूती रायदही से मरकजी मुसलह पुलिस फोर्सेज आम इंतजामिया बिल 2026 को मंजूर कर लिया। दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने गुज़िश्ता हफ्ते बिल मुतारिफ कराया था, जिसका मकसद मरकजी मुसलह पुलिस फोर्सेज में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अफसरान और दीगर अफसरान के तकरर और खिदमात से मुतालिक शरायत के कवानीन को मुंजबित करना है। बिल में इस बात का इल्तजाम है कि इंस्पेक्टर जनरल रैंक के तमाम ओहदों पर 50% और एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के ओहदों पर कम अज कम 67% और डायरेक्टर जनरल और स्पेशल डायरेक्टर जनरल के तमाम ओहदों पर انڈین پولیس سروس آئی پی ایس افسران کا ڈیپوٹیشن پر تقرر کیا جائے۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے مغربی ایشیا مہازارائی کے درمیان میٹروپولیٹن شہروں میں ایل پی جی کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 195.50 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کی جانب سے ویب سائٹ کے مطابق دلی میں کمرشل ایل پی جی گیس سلنڈر کی خوردہ قیمت اب 2078.50 روپے ہوگی۔ اسی طرح کولکاتہ میں کمرشل گیس سلنڈر اب 2208 روپے میں، ممبئی میں 2031 روپے میں اور چنئی میں 2246.50 روپے میں ملے گا۔ 19 کلوگرام کے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی نظر ثانی شدہ قیمتیں آج سے نافذ ہوں گی۔ اس دوران گھریلو استعمال کے ایل پی جی سلنڈروں کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت نے وضاحت کی ہے کہ صنعتوں اور ہوٹلوں کی جانب سے استعمال کردہ کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں پر کنٹرول نہیں ہوتا اور یہ بازار پر مبنی ہوتی ہیں اور ان پر عام طور پر ماہانہ بنیاد پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ روس کے پہلے نائب وزیر اعظم ڈینس منتوروو کل سے بھارت کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران جناب منتوروو نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے ملاقات کریں گے۔ روسی نائب وزیر اعظم قومی راجدھانی میں سیوا تیرت 3 میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سے بھی ملاقات کریں گے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج بتایا کہ حکومت اپریل مئی 2026 کے دوران علاقہ جاتی سطح پر علاقائی زرعی کانفرنسوں کا جامع ملکگیر سلسلہ چلائے گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے کہا کہ یہ کانفرنسیں زرعی شعبے میں منظم مکالمے، جائزے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کریں گی۔ بھارت کے قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی این ایچ اے آئی نے مالی سال 2025-26 کے دوران قومی شاہراہوں کے معاملے میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے بتایا کہ این ایچ اے آئی نے 5,300 کلومیٹر سے زیادہ قومی شاہراہیں تعمیر کی ہیں، جو کہ سال کے 4,640 کلومیٹر کے نشانے سے 15% زیادہ ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں حکومت کے 2027 کی مردم شماری مہم کے حصے کے طور پر از خود اندراج پہل میں حصہ لیا۔ صدر جمہوریہ نے پورٹل پر درج کی گئی اپنی گھریلو تفصیلات کا از خود شمار کیا۔ اس موقع پر داخلہ سیکرٹری گووند موہن، بھارت کے رجسٹرار جنرل اور مردم شماری کمشنر مرتیونجے کمار نارائن اور دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھی آن لائن طریقے سے اپنی ذاتی تفصیلات درج کیں۔ سینئر وکیل اور پنجاب میں اپوزیشن کے سابق لیڈر ہرویندر سنگھ پھولکا نے آج نئی دلی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ جناب پھولکا مرکزی وزیر اور پارٹی کے سینئر رہنما ہردیپ سنگھ پوری اور بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چک کی موجودگی میں بی جے پی میں شامل ہوئے۔ منگولیا کی راجدھانی ایلن بٹور میں جاری ایشیائی مکے بازی چیمپئن شپ میں بھارت کے سچن سیواچ اور وشوناتھ سریش نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ مردوں کے 60 کلوگرام زمرے میں سیواچ نے منگولیا کے کھلاڑی کو ایک سخت مقابلے میں 1-4 پوائنٹ سے شکست دی۔ کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ چینی تائپے کے چینگ وی لی سے ہوگا۔ سریش نے کرغستان کے بیزگات ارگوشکوف کو 0-5 پوائنٹ سے شکست دی۔ کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ موجودہ عالمی چیمپئن سنزار تشکین بائی سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں مہازارائی کے باوجود ملک میں خریف سیزن کے لیے کھاد، فصل کے بیج اور زرعی کیمیکلز کا مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ شہری ہوا بازی کی صنعت نے گھریلو پروازوں کے لیے اے ٹی ایف کی قیمت میں اضافے کو محدود کرنے کے مرکز کے فیصلے کی ستائش کی ہے، جسے ناسازگار صورتحال میں راحت ملے گی۔ وزیراعظم اور بی جے پی کے سینئر رہنما نریندر مودی نے غیر قانونی طور پر امیگریشن کو ختم کرنے اور آسام میں زمینی حقوق کے تحفظ کا عہد کیا ہے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے گزر بسر کے خرچ میں اضافے کا الزام لگایا ہے۔ پارلیمنٹ نے قرض کی نادہندگی اور دیوالیہ پن سے متعلق ضابطے کے ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے۔ راجیہ سبھا نے مرکزی مسلح پولیس فورسز کے اہلکاروں سے متعلق عام ضابطوں کو منظم کرنے کے بل کو منظوری دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مردم شماری 2027 کے لیے اپنے اندراج کے عمل میں شامل ہوئی۔ اور منگولیا میں ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے سچن سیواج اور وشوناتھ سریش مردوں کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔